ओम नमो भगवान अजितनाथाय।
अरहंतम अजितम विश्व कमलाकर भास्करम अम्लान केवलादर्श संक्रांत जगतम स्तुवे।
जब जब ये धारा धर्म विपासु आत्माओं की करुणनाद से गुंजित होती है तो उनकी सर्व कामना तृप्त कर उनके अंतःस्थल में धर्म पयस्विनी प्रवाहित करने हेतु तीर्थंकर आत्माओं को आना ही पड़ता है। कालचक्र जब चौथे आरे में गतिमान था तो अपने स्वभाव अनुसार उसने पृथ्वी के ऊपर मोक्ष तथा नीचे नरक का द्वार खोल दिया था। परिणामतः जीव को अपने नियति चयन की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। मोक्ष मार्ग के पक्षधर इस बात पर पूरी तरह आश्वस्त थे कि सच्चे हृदय से राह देखने पर तीर्थंकर आत्माओं का आगमन अवश्य होता है, क्योंकि कालचक्र के मोक्ष भाव के प्रथम तीर्थंकर के रूप में भगवान आदिनाथ ने उनकी धर्म पिपासा का शमन किया ही था। उन्हीं मोक्ष पिपासुओं की अनवरत टेर पर अभयदान प्रदाता के रूप में सर्वश्रेष्ठ शक्ति शील और सौंदर्य के धारक ज्ञान त्रयुक्त अपने ऊर्जस्वित शरीर से समस्त लोक में धर्म प्रकाशक अज्ञानांधकार में भटकते हुए मानव को सत्य पथ दिखाने वाले वीतराग अजय भगवान अजितनाथ ने द्वितीय तीर्थंकर के रूप में पधारकर अयोध्या नगरी को पुनः धन्य किया।
राजा ऋषभ देव स्थापित इक्ष्वाकु वंश के राजा जितशत्रु अपनी महारानी विजया के साथ अयोध्या में सुखपूर्वक शासन करते थे। राजा जितशत्रु द्वारा तीर्थंकर अजितनाथ के तत्व रूप को आत्मसात करके महारानी विजया गर्भवती हुई थी। माता ने शुभ स्वप्न देखे। सर्वश्रेष्ठ मातृशक्ति और दिव्य गुणों से समलंकृत माता विजया ऐसा सुअवसर प्राप्त कर धन्य हो उठी। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के दीर्घ अंतराल के पश्चात देवों ने तीर्थंकर आगमन का सुख प्राप्त किया। धनाधिपति कुबेर ने तो 15 मास पर्यंत दिन में 3 बार महल के प्रांगण में रत्न वर्षा की।
9 मास पूर्ण होने पर माघ शुक्ल दशमी के दिन भगवान के जन्म से अयोध्या नगरी धन्य हो गई। उस समय चतुर्दिक आह्लाद का वातावरण था। क्षीर सागर तीर्थंकर स्पर्श पाने तथा मेरु शिखर भगवान का आसन बनने के लिए व्याकुल हो उठे। हस्तिलांछन और स्वर्णमयी देह कांति वाले भगवान का इस धरा पर आगमन इंद्राणी शचि और अन्य देवों के लिए अति आह्लाद का था। कोई भी आत्मा अनेक जन्मों के पुण्यों के कारण ही तीर्थंकर के रूप में दुखी आत्माओं के कल्याण के लिए इस धरा पर आती है। तो आइए हम आपको भगवान अजितनाथ के पूर्व भव की ओर ले चलते हैं।
अपने पूर्व भव में भगवान अजितनाथ विमल वाहन के रूप में वत्स देश में सुसीमा नगरी के शासक थे। उन्हें उत्साह सिद्धि मंत्र सिद्धि और फल सिद्धि प्राप्त थी। वे सत्य जीवन के प्रेरक थे। उनके उच्चारण मात्र से ही मंत्र शुद्ध हो जाते थे, जिनसे वे अपनी दिव्य और आत्मिक अनुभूतियों को प्रकट करते थे। सैकड़ों राजा और प्रजाजन उनके अनुयायी थे।
भगवान अजितनाथ अपने पूर्व भव से ही लोगों के धर्मगुरु बने हुए थे। अब तीर्थंकर रूप में त्रिलोक के परम गुरु भी बन गए। इस अनंत शक्ति की कृपा से ही गर्भधारण करने के पश्चात महारानी विजया कभी महाराज जित शत्रु से शतरंज में पराजित नहीं हो पाई थी। संभवतः इसी कारण उन्होंने अपने तीर्थंकर पुत्र का नाम अजित रखा था। अपनी माता को खेल में जीतने की बुद्धि देने वाले भगवान अजितनाथ ने कालांतर में संसार के सभी खेलों में जीतने की बुद्धि देने का पुरुषार्थ प्राप्त किया।
मोह मुक्त और निरासक्त भगवान अजितनाथ ने अनेक सुंदरियों को अपना पतित्व देकर उनमें मोक्ष भाव स्थापित कर उनके गर्भ से धर्मयुक्त संतान उत्पन्न कर इस संसार में धर्मात्माओं का विस्तार किया। अजित वीर्य भगवान अजितनाथ के मोक्ष वीर्य से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक धर्म शासन चलता रहा। तीर्थंकर का राजा होना अनिवार्य है, क्योंकि इसी रूप में ही वो लोक कल्याणकारी जीवन एवं सत्य व्यवस्था स्थापित कर सकता है। तीर्थंकर अजितनाथ राजा अजितनाथ भी थे। अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण ही वे अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान व केवल ज्ञान के धारक हुए थे। उनके आत्मिक वैराग्य को आकाश में उत्पन्न होकर तुरंत विलीन होने वाली एक उल्का ज्योति ने सक्रिय कर दिया था। संसार में अजेय बनकर जीने वाले भगवान अजितनाथ ने बड़ी कठोर मुक्ति साधना की थी। उनका ज्ञान, दर्शन और चरित्र सर्वोत्कृष्ट था।
अवसर्पिणी काल ने पहले ही परम उत्थान का अनुभव प्राप्त कर लिया था। परिणामतः काल स्वभाव का मोक्ष भाव पुनः सक्रिय हो उठा और लोकांतिक ज्ञान प्रकाशक के रूप में अलौकिक वैभव संपन्न तीर्थंकर आत्माएं लोक कल्याण के लिए पधारने लगी। भगवान अजितनाथ हर आत्मा की धर्म सत्ता के शासक, अपनी पत्नियों और संतानों के धर्मदाता और समस्त संसार के मोक्षदाता थे। अनंत बलशाली अजितनाथ सुकोमल शांति के मुक्तिदाता थे। समस्त सिद्धियों के स्वामी के रूप में वो अनेक सिद्धात्माओं के सर्जक थे। अपनी कठोर साधना के उपरांत सम्मेद शिखर पर भगवान अजितनाथ ने चैत्र शुक्ल पंचमी को निर्वाण की प्राप्ति की थी। इनका सेवक महायक्ष और सेविका अजिता यक्षिणी थी। ऐसे मोक्ष प्रभावक तीर्थंकरों के देह का निर्माण हो सकता है, पर उनका धर्म शासन आज भी जिनालयों के माध्यम से हमारे समक्ष जीवंत है।
भगवान अजितनाथ सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य, सर्वश्रेष्ठ देह शक्ति, सर्वश्रेष्ठ वीर शक्ति के आगार थे। अपने समवसरण में उन्होंने तत्कालीन सभी भव्यात्माओं को आकर्षित किया था। उन्होंने कैवल्य प्रकाश में ही वास्तविक सुख की तेजस्विता का दर्शन किया था। ऐसे अजेय, मुक्त, पूर्ण अजितनाथ के जीवन दर्शन से हमें भी ऐसा ही साहसपूर्ण कार्य करने की प्रेरणा मिले, यही आशीर्वाद अपेक्षित है। काल चक्र के मोक्ष भाव के द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ को हमारी भाव संवेदना समर्पित है।
ओम नमो भगवान संभवनाथाय नमः।
विश्व भव्य जना राम कुल्या तुल्या जयंतिता देशना समये वाचा श्री संभव जगतपते।
भगवान ऋषभदेव स्थापित तथा भगवान अजितनाथ समर्थित धर्म शासन के लंबे समय तक चलने से मोक्षकामी आत्माओं की संख्या बढ़ने लगी। उनकी करुण पुकार इतनी हृदय स्पर्शी थी कि तारणहार तीर्थंकर आत्मा द्रवित हो उठी। परिणामतः श्रुत ज्ञानियों श्रमणों और श्रावकों की बस्ती के रूप में विख्यात श्रावस्ती नगरी को धन्य बनाने के लिए तृतीय तीर्थंकर के रूप में असंभव को संभव बनाने वाले भगवान संभवनाथ को पधारना पड़ा। तो आइए हम आपको भगवान संभवनाथ की कर्म भूमि की ओर ले चलते हैं।
श्रावस्ती नरेश महाराज जितारी अपनी धर्म प्राणा महारानी सेना के साथ सुखपूर्वक राज्य करते थे। एक बार यह नगरी मेघराज के कोप के कारण अतिशय जल पिपासा से व्याकुल होने से धान्य धारण नहीं कर पा रही थी। अन्नपूर्णा को प्रसन्न चित्त करना सर्वथा कठिन था। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ऐसी ही विकट स्थिति में तृतीय तीर्थंकर के रूप में भगवान संभवनाथ का गर्भावतरण हुआ था। उनके गर्भ में आते ही वसुंधरा जलाप्लावित हो गई। धरती बीजारोपण बिना ही अन्न उगाने लगी। भगवान की लोक कल्याणमयी करुणा धरती के स्वभाव में समा गई।
नौ मास के पश्चात कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को अश्वलाछनधारी सुवर्ण कांति के धारक बाल भगवान का जन्म हुआ। चूंकि भगवान के आने से सारे असंभव कार्य संभव हो गए थे, इसीलिए इनका नाम संभवनाथ रखा गया। वास्तव में कई जन्मों की स्वकल्याण और लोक कल्याण की प्रवृत्तियां ही किसी आत्मा को तीर्थंकर बनाती हैं। पूर्व काल में हुए तीर्थंकर स्वयं प्रभ से मुनि दीक्षा ग्रहण कर अपने उच्चतम स्वभाव और शुद्धतम कार्यों द्वारा राजा विमल वाहन ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध पाया। विमल वाहन ने दुष्काल ग्रस्त प्रजा के कल्याण के लिए अथक परिश्रम किया था और संभवनाथ के रूप में गर्भ में आते ही पुनः धरती को दुष्काल मुक्त कर दिया।
ओम नमो हरिहंता।
धन्य हैं ऐसे करुणा सिंधु भगवान संभवनाथ जिनका धरती से इतना गहरा नाता है। यदि इस धरा को लंबी अवधि तक सदैव तीर्थंकर की प्राप्ति न हो तो वो असंतुलित हो जाती है।
तीर्थंकर आत्माएं लौकिक सुखों में आबद्ध नहीं होती हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य किसी महत्तर कार्य को पूरा करना होता है। मेघ दर्शन ने उन्हें सांसारिक क्षणभंगुरता का बोध कराया, परिणामतः समस्त वैभव संपदा को ठुकराकर संभवनाथ ने आत्मिक विकास के लिए मुनिवेश धारण कर लिया। स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले संभवनाथ हर संभव कर्म कारण को तपस्या की अग्नि में जलाने लगे। प्रत्येक जीव के मोक्ष कल्याणकारी समर्थ पाने के लिए संभवनाथ अपने ज्ञान से अन्य आत्माओं के सारे ही आयाम जानने की साधना करने लगे। युगों युगों तक धर्म शासन बनाए रखने के लिए शाश्वत सत्यानुशीलन करना ही उनका उद्देश्य था। उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी, जिसकी प्राप्ति के पश्चात कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता। इस अवस्था में उनके मुखारविंद से निकली हुई प्रत्येक अमृतवाणी शाश्वत सत्य को प्रकट करती थी। वह त्रिकाला बाधित थी, उसके श्रवण मात्र से ही शाश्वत सत्य की स्थापना हो जाती थी।
भगवान संभवनाथ की वाणी सद्भाव जागरण में सफल थी। उनकी कृपा से सारे असंभव कार्य संभव हो जाते थे। अनेक वर्षों तक विभिन्न स्थानों पर विहार और तप करने के पश्चात अंततः वो सम्मेद शिखर पर पधारे, जहां चैत्र शुक्ल षष्ठी को संपूर्ण अवशिष्ट अघातिया कर्मों का नाश करके उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। आपका श्रीमुख यक्ष और दुरितारी यक्षिणी थी।
शरणागत की आत्मा को भवचक्र से मुक्ति दिलाने वाले भगवान संभवनाथ को शत शत नमन। जब भी आत्म मार्ग पर चलना कठिन हो तो भगवान संभवनाथ की साधना ही सर्वथा स्वीकार्य है, क्योंकि हर संभावना को वास्तविक रूप प्रदान करने वाले संभवनाथ ही हैं। उन्होंने चतुर्थ तीर्थंकर की प्राप्ति तक धर्म शासन और आत्म शासन को बनाए रखा। जब तक हमारे लिए तीर्थंकर मार्ग पर चलना संभव है, जिनालयों में तीर्थंकर संग संभव है, तब तक भगवान संभवनाथ की स्तुति हमारी प्रेरक शक्ति रहेगी। विश्व भव्य जना राम कुल्य तुल्य जयंतिता देश ना समय वाच श्री संभव जगतपते।
ओम भगवान अभिनंदन नाथाय नमः।
अनेकांत मतांबोधि समुल्लासन चंद्रमा दद्यादमंदमानंदम भगवान अभिनंदना।
पक्ष और विपक्ष के संयोग से ही समपक्ष का सृजन होता है। सुख और दुख का द्वंद ही मानव को चरम सत्ता की ओर उन्मुख करता है, यही काल की लीला है। चौथे आरे में परिगमन करता हुआ कालचक्र अपने स्वभाव के अनुसार मोक्ष मार्ग का प्रेरक होता है। इसी अवस्था में दुख संतप्त आत्माओं की करुण पुकार से त्रविभूत होकर तीर्थंकर आत्माएं अपनी पीयूष वर्षीय वाणी से उनका सम्यक मार्गदर्शन करने के लिए इस धरा पर पधारती हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने मूल प्रकृति प्रदान की थी। धर्म वीर्य प्रदान करने की कृपा भगवान अजितनाथ ने की। भगवान संभवनाथ ने इस धरा को धान्य संपन्न किया था। चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनंदन स्वामी भी पीछे कैसे रह सकते थे? वो तो शुष्क हृदय को असीम आनंद से परिपूर्ण कर सदा सदा के लिए अभिनंदनीय हो गए थे। शुष्क जीवन में आध्यात्म पुष्प खिलाकर चतुर्दिक प्रसन्नता का वातावरण पैदा करने वाले अमृत कुंभ की तरह महालक्ष्मी और सरस्वती की धारा समन्वय के प्रतीक जगत अभिनंदनीय भगवान अभिनंदन स्वामी ने अपने आगमन से इक्ष्वाकु वंश की परंपरा को गौरवान्वित करते हुए अयोध्या को पुनः धन्य होने का सौभाग्य प्रदान किया।
रानी सिद्धार्था अपनी जगत कल्याणी कोख में त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर को स्थान देकर धन्य हो गईं। पिता स्वयंवर ने भगवान की प्रभुता को अपने हर रक्त कण में समाकर शारीरिक शक्ति प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे माता पिता जीव मात्र के लिए सदा अभिनंदनीय हैं। धर्म मार्ग को पल्लवित पुष्पित करने वाले अभिनंदन स्वामी के सानिध्य में आने वाला हर मानव आदर का पात्र है। वानर लाक्षणधारी भगवान अभिनंदन स्वामी ने माघ शुक्ल द्वादशी को जन्म लेकर अपनी स्वर्णमयी कांति से चतुर्दिक प्रसन्नता का वातावरण उत्पन्न कर दिया। बाल भगवान के अनिंद्य सौंदर्य से इंद्राणी शची और इंद्र मोहित हो गए।
जब बाल भगवान यौवनावस्था में आए तो पिता स्वयंवर ने इनका विवाह कर दिया। आगे चलकर अभिनंदन नाथ पर राज्यभार भी आया, जिसका निर्वाह उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक किया। पर तीर्थंकर आत्माएं जागतिक आकर्षणों में नहीं बंधती। एक बार बादलों में गंधर्व नगर का निर्माण व विनाश होते देखकर इनमें विरक्ति भाव जागृत हो गया। लोकांतिक देवों ने भगवान के विचारों की सराहना करते हुए उनके इस धरा पर आने का उद्देश्य बताया। फिर क्या था, भगवान को सब कुछ स्मरण हो आया और अनेक राजाओं के साथ उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली।
अपने पूर्व भाव के पुण्य कार्यों के कारण ही कोई आत्मा तीर्थंकर रूप को धारण करती है। अपने पूर्व भाव में भगवान अभिनंदन स्वामी कीर्ति, सरस्वती और लक्ष्मी के स्वामी रूप में रत्न संचय नामक नगर में महाबल नामक राजा थे, जिन्होंने आत्मविकास करके तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का बंध प्राप्त कर लिया था और अपने कल्याणकारी भावनाओं के कारण भगवान अभिनंदन स्वामी के रूप में आए।
अपनी कठोर आत्मसाधना के उपरांत असन वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वो सर्वदर्शी व सर्वज्ञानी हो गए। भगवान अभिनंदन स्वामी का हृदय लोक कल्याण की भावना से परिपूर्ण था। दीर्घ काल तक उन्होंने विहार यात्राएं, धर्मोपदेश तथा तीर्थ स्थापन का कार्य किया। जब उन्हें जीवन का अंत समय सन्निकट आता जान पड़ा तो वो सम्मेद शिखर पर जा पहुंचे। वहीं बैसाख शुक्ल षष्ठी को अनेक मुनियों के साथ उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। भगवान के सेवक यक्ष का नाम यक्षेश्वर और यक्षिणी का नाम काली था।
अन्यथा शरण।
जीवन के मोहग्रस्त संसार को पूजनीय बनाने वाले तीर्थंकर भगवान अभिनंदन स्वामी हमारे लिए सतत स्तुत्य हैं। उनके स्मरण मात्र से ही जीव के हृदय में उमंग की स्फूर्णा होने लगती है। विभिन्न संयोगों से सत्य स्थिति की प्राप्ति कराने वाले एक ही विषय में सत्य के अनेक रूपों का दर्शन कराने वाले सत्य के परिणामों के दर्शक सत्य की विशालता को ही अनेकांत दर्शन का नाम देने वाले भगवान श्री अभिनंदन स्वामी हमारे लिए सर्वदा अभिनंदनीय हैं।
वास्तव में तीर्थंकर वही है जो दूसरों को मुक्त करने में सहयोग दे, हमें क्रोध अहंकार व लोभ से विकसित अपने व्यक्तित्व को प्रेम करुणा व परमार्थ के पुजारी तीर्थंकर आत्माओं को सौंप देना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। अनेकांत मताम मोधे सम्मुलासन चंद्रमा दत्याद मंद मानंदम भगवानम अभिनंदन ओम नमो सुमति नाथाय नमः।
जुषत किरीटी शाणाघो तेज तांगी नखावली भगवान सुमति स्वामी तनु अभिनतानि वा।
परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सुख और दुख चक्रवत आते जाते ही रहते हैं। यदि हम जीवन को समग्र दृष्टि से देखें तो दुख ही हमारे अधिक सन्निकट जान पड़ता है, पर यह दुख हमारे लिए एक चुनौती है और मानव मात्र का ये पावन कर्तव्य है कि वो इसको तिरोहित कर चरम सत्य की प्राप्ति करे। काल जब चौथे आरे में प्रविष्ट होता है तो अपने स्वभाव अनुसार मोक्ष मार्ग की ओर उन्मुख होता है, और ऐसे ही समय में दुख तप्त प्राणियों की करुण पुकार से त्रविभूत होकर तीर्थंकर आत्माएं अपनी पीयूष वर्षी वाणी से सम्यक मार्गदर्शन किया करती हैं। पांचवें तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ ने चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनंदन स्वामी की लोक कल्याणमयी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सांसारिक मोह माया में भ्रमित मानव को रत्नत्रय का मूल सूत्र प्रदान कर भवबंधन से मुक्त होने का मार्ग बताया।
नन्नी नन्नी चांद मेली पानी में नहाए नन्नी नन्नी फूल धूल पहन के घर आए चुप रहा भी न जाए कुछ कहा भी न जाए
हर दाग चूम ले जाए।
वोल्टास मैक्स क्लीन वॉशिंग मशीन, इसका डायनाबॉल पल्सेटर जिद्दी मैल को भी बाहर निकाले और बच्चों को बच्चे ही रहने दे।
मैक्स क्लीन हर दाग चूम ले जाए।